نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک کتاب حج اور عمرے کی آسانیاں اس کا مختصر ورژن جو ہے یہ تھوڑا سا آپس میں دہرائیں گے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ حج اور عمرے کو مشکل سمجھتے بھی ہیں اور مشکل کر بھی دیتے ہیں. حالانکہ ہمارا دین کیا ہے؟ الدین والیسر, کہہ لیجئے کہ دین آسانی کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آسانیوں والا دین دے کر بھیجا ہے. پھر آپ لوگوں کو جب بھی کسی جگہ بھیجتے تھے دین کی بات کے لیے تو آپ کہا کرتے تھے بشیرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو, نفرت نہ دلایا کرو, یسرو ولا تعسرو, آسانیاں پیدا کیا کرو, مشکلیں نہ پیدا کیا کرو. اب کوئی کہے کہ جی نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے تو یہ اس کی بات ہے, اصل میں ایسا نہیں ہے. نماز کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ جس کا مزاج دین کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے لیے پھر دین مشکل نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کوئی کام کبھی کبھار کرے نا تو اس کو بڑے پروٹوکول سے کرتے ہیں. جیسے مذہب دیکھے کہ ہمارے یہاں بچوں کی شادی ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے نا, تو ہم شادی کی تیاری ہر ممکن طریقے سے اچھی کرتے ہیں. پھر اس میں کچھ ادھر کی بات کچھ ادھر کی تاکہ شادی یادگار بن جائے, کیونکہ وہ کبھی کبھار کا ایک معاملہ دکھتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے کہ کوئی کام جو ہم روز کرتے ہیں اپنے گھر میں, صفائی یا کھانا پکانا, تو اس میں بعض دفعہ ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا. تو حج اور عمرہ چونکہ کبھی کبھار کیا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے ہمیں پھر یہ ذرا مشکل کر کے دکھانا اچھا لگتا ہے. یہ جو ہم نے سیریز چوز کی ہے حج اور عمرے کی آسانیاں, اس کا مقصد کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ابھی جانے کی نیت کیے بیٹھے ہیں, ابھی گئے نہیں ہیں, اور جب تک کوئی کام کیا نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس کے بارے میں مزید سیکھ لیا جائے, مزید سمجھ لیا جائے, تو امید ہے نا کہ غلطیاں کم ہوں گی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں حج کیا تھا لیکن اب دوبارہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہتے ہیں تب پتہ نہیں تھا, بغیر سمجھے کرا, بغیر پڑھے کر لیا. کوئی کہتا ہے جی نئی نئی شادی ہوئی تھی, جوانی تھی, زیادہ ابھی ہوش نہیں تھا, اب حج دوبارہ کرنا ہے. تو یہ وقت آپ کا میرا اس اپنے ساری محنت مشقت کو بچانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے غلطیاں پھر بھی ہوں گی ہم سے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر اس وقت ہم علم لے کر جائیں گے تو فائدہ ہوگا. دنیا میں آپ کوئی بھی کام بغیر علم لیے نہیں کرتے نا. کوئی ڈرائیونگ چلانے کا کتنا بھی شوقین کیوں نہ ہو, اس کو چلانی آتی بھی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ سیکھتا ہے تو پھر ہی اس کو لائسنس ملتا ہے نا, اجازت ابھی ملتی ہے. تو کام کرنے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ حج اور عمرہ دو ایسی نیکیاں ہیں کہ جس میں بندے کی جان بھی لگتی ہے, مال بھی لگتا ہے, وقت بھی لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عبادت کی موسٹلی اگر آپ دیکھیں نا تو چار بڑی بڑی قسمیں ہیں نا, بدنی عبادت ہے, جانی ہے, مالی ہے, یعنی جس میں ہمارا جان لگتی ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع, قیام, سجدہ, جسم لگتا ہے نا. پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس میں مال لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے میں بول کے کوئی آپ کو اچھی بات کہتی ہوں تو یہ میری بولنے کی طاقت لگ رہی ہے نا. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان بھی لگتی, مال بھی لگتا, وقت بھی لگتا, آپ کی سکلز اور آپ کی خوبیاں بھی لگتی ہیں, یہ سارا کچھ لگتا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت سارے کفارات کا ذریعہ ہوگا. ہم سب یہ حدیث کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے گویا کہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کتاب کل آپ کے ساتھ میں نے انٹروڈکٹری سیشن میں ذکر کیا تھا, حج اور عمرے کے مسائل. اس بک کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے. اصل میں اس میں ساری حدیثیں ہی ہیں لیکن اس کو اردو کے ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں اور ٹاپک وائز الگ الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی ایک عام میرے جیسے سیدھے بندے کا بھی جس کو بہت علم نہیں ہے نا, وہ اس کتاب کی مدد سے حج کا طریقہ, حج کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا اس کی کمی بیشی ہے, وہ کر سکتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حج کی بہت ساری, یعنی شروع کے ٹاپک سے دیکھیں کہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے. یہ جو شروع کے اس کے پیج ہیں نا 36 سے لے کر اگر آپ اس کو دیکھیں گے, یہ پہلے تقریباً 47, تو اس میں اے ٹو زی پورا حج کا طریقہ بھی آتا ہے. پھر بعد میں مختلف چیزیں ہیں جیسے حج کی فرض ہے کہ نہیں, شرائط کیا ہیں, پھر میقات ہے. اس میں خاص طور پہ آپ کے اور میرے لیے ایک ٹاپک خواتین کا حج کے نام پر ہے نا, क्योंकि हमें ज़रा अपने मुतल्लिका सवाल आता है। अब इसके अंदर से अगर आप इसकी ऑडियो सुन लें, जैसे कल मैंने कुछ लोगों को डाउनलोड करके भी यहाँ दी थी, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने सुनना शुरू भी कर दिया होगा, हत्ता कि ये देखिए अहराम कैसे क्या कपड़े हैं उसमें, तो ये बहुत सिंपल तरीके से इसमें आप तक ये नॉलेज पहुँच जाता है। ये तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में भी थोड़ा सा इसका गो थ्रू करवा दूंगी दूसरी किताब के थ्रू, लेकिन इस वक्त जो चीज़ हम करेंगे वो क्या है, हज और उम्रे की आसानियाँ। मुझे लगता है कि ये सीरीज़ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगी। बहुत सारे बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हज करके आते हैं फिर कहते हैं दिल में गिल्ट है, क्या है जी वो फलां जगह बाल टूट गया था तो फिर उसका दम देना था, फिर कोई औरतों के मसाइल होते हैं उसके और अंदर औरतें उलझी रहती हैं। अभी मैं उम्रे से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो रमज़ान का उम्रा किया। जहाँ भी जिस बहन के पास आप बैठ जाएं, मस्जिद नबवी में या हरम में, यकीन करें वो सवाल पूछने शुरू हो जाती थी थोड़ा बात करने से, या उनको अंदाज़ा हो जाता था बाजी आप पढ़ाती हैं, या बाजी अच्छा बाजी ये ठीक नहीं वो नहीं कैसे करें, यानी लोगों के पास इल्म नहीं है। वहाँ बैठे हुए लोग और मैंने उनसे कई ऐसे सवाल किए हैं छोटे बड़े, लेकिन उनको नहीं पता था। तो फिर मैंने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला तू मुझे ज़रिया बना। अब आप सब माशाल्लाह जाने वाले हैं और ये बात जब भी कोई सुनेगा, जहाँ भी सुने, इवन पूरे शहर में कोई कहीं से भी जा रहा है, हमें क्या लगे, आप उस कोर्स में आइए, इससे फ़ायदा उठाइए। जाहिर बात है कि ये एक हम सबका एक दूसरे के लिए सदका होगा ना, तो आप लोग ये बुक खोल लीजिए। असल में ये एक बहुत मोटी किताब है, यानी ये आप ये दो तीन किताबों को मिलाएं ना तो ये किताब इतनी मोटी है, इससे भी बड़ी है, तकरीबन इतनी मोटी बड़े साइज़ की थी। लेकिन मेरे दिल में एक ये ख्वाहिश थी कि जो बुक आप पढ़ें ना वो आप साथ लेकर भी जाएं। तो ये उसका मुख्तसर है, मुख्तसर मीन के उसके अंदर से जो मेन नुक्ते हैं ना वो उसका आपके लिए लिस्ट है, और अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप बड़ी बुक भी ले लेंगे। इसमें हम खोलते हैं ये किताब, जो ये डॉक्टर फजल साहब है इन्होंने इसको कंपाइल किया है, और जितने इसके हवाले हैं सारे कुरान से और सुन्नत से हैं, किसी एक मसलक के लिए नहीं। मैंने कल भी तذکرہ कर दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हज एक ऐसा मौजू है जिसमें बहुत कम फिकी इख्तलाफ है, ये आप सबके लिए शरह सदर है जो इस मौजू को सुनना चाह रहे हैं। कोई सोच सकता है जी ये आप किस मसलक या किस मौजू या किस मस्जिद के तहत पढ़ा रहे हैं, ये कुरान और सुन्नत है, क्योंकि हज में बहुत कम इख्तलाफ है, इल्ला माशाल्लाह मुझे तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं दिखा। हाँ नमाज में कुछ इश्यूज इख्तलाफी हैं, वो हमारे कल्चर में हवाई बड़ी दे दी गई है, हालांकि वो भी कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, जितनी भी बातें हैं वो या सुन्नतों में है या उसमें, यानी यही कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर या कम बेहतर तरीके में। फ़राइज़ में तो कोई नहीं कहता कि चार की बजाय पाँच फ़र्ज़ पढ़ो, कोई नहीं कहता पांच की बजाय छह नमाजें हैं, कभी आज तक किसी मसलक ने ये नहीं कहा होगा कि जी दो की बजाय चार सजदे हम करेंगे, दो रुकू करने हैं एक नहीं करना। अल्लाह का शुक्र है उम्मत में भी इतना फाट नहीं पड़ा, लेकिन बाज़ दफ़ा तासुब की वजह से दिलों को दूर करने के लिए, क्योंकि शैतान को पता है कि जितना उम्मत मुस्लिम आपस में कटेगी, फ़र्केबाजी होगी, तफ़रक़ों में पड़ेंगे, उतना दीन कमज़ोर होगा। तो जैसे वो लकड़ियों के गट्ठल को तोड़ दें तो एक एक लकड़ी कोई भी तोड़ जाएगा, लेकिन जब उसको जमा कर देते हैं तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पूरे शरह सदर के साथ हम इंशाल्लाह इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप खोल के देख लीजिए पेज नंबर 5 पे इसकी फहरिस्त है। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम पढ़ेंगे, फ़र्ज़ियत हज से मुतल्लिक क्या आसानी है, यानी हज फ़र्ज़ है, अल्लाह ने हम पे हज को फ़र्ज़ किया है, लेकिन क्या आसानियाँ हैं इसमें भी, अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हज में रिज़्क हलाल भी तलब किया जा सकता है, यानी गए आप हज के लिए हैं लेकिन हल्की फुल्की सी कमाई का जरिया बन सकता है, यानी आप नॉर्वे से गए, यहाँ से कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो सऊदी अरब में नहीं होती या वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप ले जाइए, वहाँ जाकर आप उसको बेचकर उसके पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। फिर इसी तरह आगे उम्रे के मौजू हैं, फिर इसी तरह आप अपनी जगह किसी और को भी हज और उम्रा करा सकते हैं, फिर इसी तरह अगला टॉपिक है अहराम से मुतल्लिक आसानी है, इसको भी हम तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये नई चीज़ होती है, हम में से बहुत सारे लोगों ने अहराम कभी बांधा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कैसे होगा, तो ये उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर इसी तरह मक्का मुकरमा में आने जाने का टॉपिक है, तवाफ़ और सही से मुतल्लिक आसानी है, अरफात से मुतल्लिक आसानी है, मुजदलिफा से मुतल्लिक आसानी है, ये सारे नाम हज के साथ आपके जहन में आते हैं। फिर मिना में जाकर क्या आसान अल्लाह ने हमें किया हुआ है और क्या चीज़ हम उसमें इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आगे कुर्बानी के बारे में टॉपिक आएगा, तवाफ़े विदा से मुतल्लिक आसानी है, जैसे जब वापस आते हैं बिल्कुल मक्का छोड़ते हैं उसको तवाफ़े विदा कहते हैं। फिर इसमें एक पूरा टॉपिक हज और उम्रे में ख़वातीन के लिए क्या आसानियाँ रखी गई हैं उसकी बात है, और इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज़ होगी जो मेरा ख्याल है हर हज या उम्रे पर जाने वाले साथी को फ़ायदा दे सकती है, इस सोच से कि हम अगर इससे फ़ायदा उठा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसानियों का जरिया बनाएगा। पेज 17 से शुरू कर लेते हैं, आपका दिल चाहे बुक खोल लीजिए और आप सुनना भी चाहें तो भी सुन सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुतबा देते थे, जब भी कोई बात करते थे जिसको आप दरसो तदरीस कहते हैं, तो एक खुतबा पढ़ा करते थे, वही इधर लिखा हुआ है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल फला हादिया लहू व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। आप देखिए कि ये सिर्फ अरबी में लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक एक लफ्ज़ मोतियों की लड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दीन का पैगाम दिया तो आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने आप पर एक ये भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपका नऊज़ुबिल्लाह ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया, और सच्ची बात है कि हक बात करने वालों का ज़हनी तवाज़न लोगों को ख़राब ही लगता है, क्योंकि सारे लोग एक माशरे में एक काम कर रहे हैं। अगर मिसाल है उस दौर में लोग बुतों को पूछ रहे थे, अब एक शख्स आकर कहता है लोगों बुत फ़ायदा नहीं देते, एक अल्लाह से मांगो, तो लोग कहते थे देखो इसकी मत मारी की है। आप भी जानते हैं ना कि जो काम सारे करें वो हमारे लिए भी आसान होता है करना, जब आप दरिया की लहरों के साथ बहना चाहें तो बड़ा आसान है, लेकिन जब उससे मुख्तलिफ तरफ रुख बहना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह के नबी पर जो मक्का में सबसे पहला इल्ज़ाम लगा था वो यही लगा था कि ये वो बात कर रहा है जो हमने कभी सुनी नहीं, और आप आज भी नोट करेंगे जब वो कुरान सुन्नत की कोई बात करेंगे तो लोग ज़रूर आपको ये कहेंगे हमने तो ये बात कभी नहीं सुनी। कुरान में मौजूद है सूरह स्वाद की शुरू की आयतें जाके देखिए, मक्का वाले कहते थे ये क्या बातें करता है ये शख्स, हमने तो अपने बाप दादा से कभी ये बातें सुनी नहीं, इतने खुदाओं को कहता है मिलाकर एक खुदा कर दो, ये क्या बात है कि सिर्फ अल्लाह देता है, नहीं अल्लाह के साथ दूसरे भी देते हैं। तो बिल्कुल उस दौर में ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने एक जैसे हकीम कह लीजिए या जो ज्योतिषी टाइप लोग होते थे, काहिन होते थे जो इलाज करते, जिसको आज के दौर में अब झाड़ फूंक कह लें, दम करना मंत्र मंत्र, उस एक शख्स को बुलाया और आके कहा कि अल्लाह के नबी का इलाज कीजिए। आप उसके साथ बैठ गए, उसने कहा अच्छा बरखुरदार सुनाओ भाई तुम क्या कहते हो, मैंने सुना है कि तुम खुद को नबी कहते हो, तुम्हारा क्या कलाम है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है ना, ये खुतबा थोड़े बहुत अल्फाज के फ़र्क से हमें किताबों में मिलता है, आपने उसके सामने रखा। अब आप देखिए ज़ुबान नबी की हो उसमें तासीर कितनी होगी, और लफ्ज़ कितने प्यारे हैं। अगर मैं उर्दू में आपके सामने इसको पढ़ती हूँ कि बेशक सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द बयान करते हैं, हम उसी से मदद तलब करते हैं, और हम उसके सामने इस्तग़फार करते हैं, और हम अल्लाह की पनाह में आते हैं अपने नफ्स के शर से और अपने आमाल की बुराइयों से। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे कोई उसको भटकाने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह भटका दे उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं, और गवाही देता हूँ कि इस ये कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें और बरकतें करे और उनकी आल पे। अब ये लफ्ज़ उसको इतने अच्छे लगे, उनकी तो अरबी ज़ुबान थी, तो कहने लगा एक बार फिर सुनाओ। आपने फिर कह दी इन अल्हम्दुलिल्लाह नस्तगफिरुहू व नौमिनुही व नतवक्कलु अलैह। उसको 3 दफ़ा सुनने के बाद इतना मज़ा आया, बाहर आया लोगों ने कहा सुनाओ भाई क्या कहते हो, क्या इलाज किया है, कोई बीमारी पता चली। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने लग गया। तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, हमने तो आपको उसके इलाज के लिए भेजा था तो आप तो उसी का कलमा पढ़ने लग गए। तो कहने लगा कि इलाज उसके की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, क्या पता चला कि एक अल्लाह के साथ जब ताल्लुक जुड़ता है तो इंसान फिर सारी बातों से बेनियाज हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सूरह आल इमरान की आयत 102 है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जितना उसे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये आयत हम सब से एक तकाजा करती है। पहली बात है कि हम सब ईमान के साथ यहाँ जमा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आज दुनिया में कितने लोग हैं, पता नहीं उनमें कितनी खैर होगी, लेकिन अभी तक कलमा ज़ुबान पे नहीं आया, तो अल्लाह ने आपको मुझे इस मुश्किल में नहीं डाला। दूसरी बात इसमें अल्लाह से डरने की है। आप देखिए कि हज और उमरे पे जाने वाला तो अल्लाह से डर ही रहा होता है। अल्लाह ताला इस आयत में आपको मुझे बताते हैं कि हज और उमरे पे ना भी जाने वालों को अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। रमज़ान में हम सब डरते हैं अल्लाह ताला से, हम बहुत सारी गलत चीज़ें छोड़ देते हैं। अल्लाह कहते हैं इल्ला व अंतु मुस्लिमून, कब तक? वला तमूतुन्ना, मौत तक बंदे को अल्लाह से डरना। और तकवा क्या होता है, आपको सिंपल सी मिसाल दे देती हूँ। आप घर में खाना पकाती हैं, रोटी बनाते हैं ना, तो हम अपना हाथ आग से बचाते हैं ना, कितनी दफ़ा रोटी डालते उतारते उसको सेकते हुए आग लगने का डर हो सकता है ना, लेकिन जिस तरह बचते बचाते बड़े अच्छे तरीके से हम रोटियां बना लेते हैं और हमारे हाथ नहीं जलते, यही तकवा है। आप और मैं इस दुनिया के सफ़र में जहाँ आ गए हैं ना, अब इसमें आप और मैं जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे, हम गुनाहों से नहीं बचेंगे। गाड़ी चलाते हैं मर्द हजरात, आप देखते हैं कितनी गाड़ियाँ इधर उधर से आ रही होती हैं, लेकिन वो कैसे बचते हैं? तकवा के साथ बचते हैं। कोई भी ड्राइवर है और गाड़ी चलाते हुए लापरवाह हो जाए तो गाड़ी लगेगी ना, आपकी गलती से लगे या किसी की लगे। तो आप और मैं यहाँ जब तक मुहतात होकर नहीं जियेंगे, चाहे हम कितने भी नेक होने का दावा करें, ज़रा सी बेख्तियाती आपको अल्लाह की नज़रों से हटाती है। फिर जिस्म के हर हिस्से का तकवा अलग है। आँखों का तकवा ये कि आँखों को बुरी चीज़ों से बचाया जाए, कानों का तकवा कानों को ऐसी चीज़ों से दूर करें जो अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बने। तो इंशाल्लाह ये आपका मेरा मोटिव है। अब आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह आप सबको लेकर जाए, कबूलियत अल्लाह करे, ये बात पल्ले से बांध लें। मैंने जाने से लेकर वापस आने तक और वापस आने से मरते दम तक गुनाहों को छोड़ना है, आज ही से नियत करें। अगर आप ये सोचते ना कि एक छू मंतर हज हो रहा है, बस हज हो गया सारे गुनाह पाक, एक को डिटर्जेंट है जिसमें अपने कपड़े को डाल दिया और निकालेंगे तो सारे धब्बे उतर गए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। सारा घर साफ कर लें, आप पूरा चमका रहे हैं, थोड़ी देर में बच्चे आकर फिर वहाँ फर्श पे गंद डाल दें, क्या फ़ायदा होगा? नियत करके जाइए कि मैं अल्लाह बन अगली ज़िंदगी में एक नई शख्सियत बनूंगी। तब्दीली का सफ़र, हर गुनाह की यादगार को फाड़ के जाएं, तोड़ के जाएं, जला के जाएं, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी जो है वो एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह से सूरत निसा की बिल्कुल पहली आयत, आप में से बहुत सारी सिस्टर्स माशाल्लाह हर हफ्ते 10 दिन में एक शादी तो खाती होंगी, मेरा गुमान है ऐसा ही है ना। अब ये शादी क्या है, निकाह है ना, ये जो आयत पढ़ने लगे ना अल्लाह के नबी, ये खुतबा निकाह में पढ़ते थे। ज़रा सा गौर कीजिएगा, अगर कल की शादी में आपने ये आयत नहीं सुनी तो आप सुन लीजिए। या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ए लोगो अल्लाह से डरो, पीछे किसको कहा था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों को कहा था, यहाँ सबको कहा। पहली बात है कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सबका रब है वो, और सबको वही हुक्म है जो मुसलमानों का है, अल्लाह से डरने का। कौन सा रब? जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, कौन थे वो? आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर उनसे वह खलक मिन्हा ज़ौजा, उनकी बीवी को पैदा किया, वो कौन थी? हव्वा अलैहिस्सलाम थी। व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीर व निसा, फिर इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें पैदा किए। दुनिया शुरू से ऐसे ही चल रही है, तो गोया कि आप और मैं और दुनिया का हर इंसान आदम और हवा का बच्चा। इस नाते से भी तो आप देखिए, हम सब बहन भाई हैं ना, फिर ऊपर से अगर नबी सल्लम की उम्मत में से है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए अपने मुसलमान बहन भाइयों को देखकर। अफसोस की बात है कि अब कम होती है, लोगों ने दिल इतने दूर कर लिए हैं कि एक दूसरे के साथ दिलों में कई नफ़रतें पाल ली, सजे खून के रिश्तों में मोहब्बत नहीं महसूस होती अब। साथ खेलने पलने बढ़ने वालों के साथ मोहब्बत नहीं महसूस होती, तो नहीं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। फिर इसी तरह से कहा बत्तकुल्ला, पहले भी बत्तकुल्ला अब भी बत्तकुल्ला, क्यों? देखिए दो तकवे हैं, ये भी आपके लिए इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ होगी साथ हज में जाने के लिए। और वो कह के तकवा का एक रुख होता है अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह के मामलात में, अल्लाह ताला के हकूक में अल्लाह से डरना। लेकिन एक दूसरा तकवा होता है इंसानी मामलात में डरना। अब आप हज पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं, जहाँ भी कोई जाएगा, जब भी जाएगा कोई, आज नहीं जा रहे अगले साल चले जाएंगे, आप यही खुद को कहें कि मैं भी जा रही हूँ, ज़िंदगी का क्या पता। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के मामले में तो आप बड़े मुत्तकी हैं माशाल्लाह, नमाज़ें पढ़ पढ़ के आपके माथे पे मेहराब भी पड़ गई, गट्टे भी पड़ गए, वज़ू करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, चुगलियाँ भी हैं, गिबतें भी हैं, साथ रहने वालों को ताने भी दे रहे हैं। तो ये फिर इसका था कि तकवा की एक आंख है, जैसे मेरी दो आंखें ना, अब एक बंद करी है तो आप दिख रहे हैं, इधर वाले नहीं दिख रहे, ये बंद कर दूंगी तो इधर वाले नहीं दिखेंगे। तकवा की दो आंखें हैं, एक अल्लाह के मामलों में, एक बंदों के मामलों में। जैसे आप देखिए इब्लीस बहुत इबादत गुजार था दुनिया में, उसने बहुत इबादत की थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम एक इंसान का मामला आया तो तकब्बुर का शिकार हो गया। तो आपने, मैंने इंशाल्लाह इंसानी मामलों को दुरुस्त करना है, जाने से पहले रूठों को मना ले, क्या पता किसी ने वापस आना कि नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है वापस आने की। और मैंने ये आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में कहा था, ये सोच के जाएं कि मैंने वापस नहीं आना, अल्लाह आपको खैर से लाए, लोगों ने बड़े फूल बूटे आपके लिए तैयार किए होंगे, फूलों के हार रखे होंगे, आप ये सोच कर जाएं मैंने वापस नहीं आना, इस तरह की तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह ऐसा प्यारा हज होगा आपका वहाँ कि आप वापस आएंगे तो आप एक बिल्कुल नया इंसान बनकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर यहाँ देखिए रिश्तेदारियों की बात है कि उस अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से सवाल करते हो और रहमों को जोड़ने का, और अल्लाह ताला तुम पर रकीब है यानी निगेबान है। खुतबा निकाह में ये आयत क्यों आती है शौहर बीवी के ताल्लुक में? आप देखिए आज कितने रिश्ते होते हैं और उतने ही टूट जाते हैं, हर दूसरी या तीसरी शादी टूट रही है, तभी तो ज़्यादा होने लग गई, कई एक एक की जगह दो दो भी शादियां होने लग गईं। वजह क्या है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह का खौफ ना होना तो बंदा ना तो शौहर के हक दे सकता है, वल्लाह ही नहीं दे सकता, ना सास के दे सकता है, ना बहू के दे सकता है, ना रिश्तेदारों के। अल्लाह के नाम पे तो कितना सब्र करता है ना इंसान। तो हमेशा याद रखिए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, जब भी वो अपनी ज़िंदगी के नए कामों में आने लगें, ये सबक पढ़ा के उठिए कि बेटा देखो अल्लाह से डरते रहो, कौन किसी के साथ होगा हमेशा? आप देखिए अक्सर हम अपने बच्चों को डर देते हैं, अब्बू को बता दूंगी, दादा को बता देंगे, टीचर को बता देंगे, किसी का डर नहीं है। और इसी तरह एक छोटी सी चीज़ जो आपने इस हज में तकवा की देख के आनी है, नेकी के मौके का आना और उसको कबूल कर लेना। जिस तरह गुनाहों से बचने का नाम तकवा है ना, इसी तरह नेकियों को पाने का नाम भी तकवा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग गुनाह के मौके पर डर जाते हैं, नहीं, हमने गुनाह नहीं करना, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेकियों के मौके उनके सामने होते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, उनको दिखते ही नहीं, कोई और कर लेगा, ये उसका काम है, ये मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं, मैंने और भी तो करना है, ये जो कर लिया अब, एक तो कर लिया अब दूसरा क्या करना है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हज और उम्रे के बाद आपको इतनी ज़्यादा वसत मिलेगी इंशाल्लाह सोच में, कि आप अपनी रास्ते की नेकी कभी किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो इंशाल्लाह इससे भी तकवा आएगा। फिर एक आखिरी आयत सूरह अल अहज़ाब आयत 70 और 71 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो, ये भी बड़ी अहम बात है, बात सीधी हो जाती है ना काम सीधे हो जाते हैं, हैंकी पैंकी, टेढ़ी मेढ़ी, 2 और 2 4 नहीं 22 होते हैं, नहीं ये नहीं, मैं किधर हूँ तुम किधर हो, अल्लाह को ये बातें नहीं पसंद, साफ सुथरी सीधी बात दिल में जाती है। बाद जब आप देखिए लोग दर्स देते हैं बड़े रौ लगा के बातें करते हैं, बाद जब आप बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी सीधी बातें होनी चाहिए। और कहा इससे फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह तुम्हारे अमाल की इसलाह कर देगा। दुआ करते हैं अपने लिए कि अल्लाह अब हमारी अगली ज़िंदगी में हमारे अमाल की इसलाह कर दे, थक गए हम गुनाह कर करके, लेकिन नफ्स है ना असल में मोटा है, अल्लाह इस नफ्स को अपनी रहमत से झुका दे, फिर कहा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सोचें कोई गुनाह, बल्कि आप हज पे जा रहे हैं ना, आप सोचें ज़रा कोई गुनाह ऐसा है बचपन से आज तक का जो दिल में एक चुका लगा रहा है, अब करें क्या करें, आप उसको सोचें और कि अल्लाह मैं ये गुनाह माफ़ कराने जा रही हूँ। आप खुद अपने इर्द गिर्द रहने वालों से पूछें मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगती है। सबसे ज़्यादा हमें हमारे करीब के लोग जानते हैं, जो हमारी घर की बहू, बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी सासें, हमारी नंदें, हमारे रिश्तेदार, नेबर में, पड़ोसी में, इनसे इंसान का मामला अच्छा होगा ना। और अगर आपके साथ रहने वाला आपकी गवाही दे दे, इंशाल्लाह बाहर वालों की गवाही तो फिर अच्छी होगी। वरना बाहर किसी को थोड़ी देर मिले, हेलो क्या हाल है, ठीक है, लोग कहते हैं आंटी जी बड़ी अच्छी हैं, आंटी जी बड़ी स्माइली हैं, आंटी बड़ी अच्छी बात करती हैं। घर में जाकर हो सकता है वो उनको गुस्सा ही चढ़ा रहता हो, वो गुस्से में बोलती रहे। तो हमेशा अपने करीब वालों से अपने अखलाक की गवाही लेनी है इंशाल्लाह ताला हमने। फिर इसके बाद इन्होंने चंद बातें लिखी हैं जिसका खुलासा यही है कि हमारा दीन जो है वो आसानियों का दीन है। मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपकी भी इसमें सहूलत हो जाए। रब्बे रहीमो करीम अपने बंदों के लिए आसानी का इरादा फरमाते हैं, वो इनकी कमज़ोरियों से खूब आगाह हैं और इन पर अज़राए शफ़क़त तख़फ़ीफ़ फरमाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने दीन को सरापाए आसानी बनाया और इसमें कोई तंगी नहीं रखी। तो याद रखिए हमारा दीन आसानियों का दीन है, मुश्किल का दीन नहीं है। जानबूझ के उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। फिर उन्होंने दीन पहुंचाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी करने वाले मुअल्लिम और उम्मत इस्लामिया को आसानी करने वाली उम्मत बनाया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को आसानी करने का हुक्म दिया और तंगी करने से मना फरमाया। दीन इस्लाम की सहूलत और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसानी करने के मज़ाहिर दीन के हर गोशे में मौजूद हैं। हज चूँकि अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, इसमें अल्लाह ताला की अता करदा और नबी सल्लम की बयान करदा आसानियाँ आगाज़ से इंतहा तक कसरत से मौजूद हैं। आपका इरशाद मुबारक है तुम आसानी करो और तंगी ना करो की तामील करते हुए तौफीक इलाही से एक कदरे मुफस्सल किताब हज और उमरे की आसानियों के उनवान से तरतीब दी है। आम लोगों की सहूलत की खातर इसी किताब का खुलासा इन औराक में अल्लाह ताला के फजल से पेश किया जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा उठाने वाला बना दे। ठीक है।